23 नंबर के रजिस्टर में 17 पेज पर 6889 का प्रातः क्लास दूसरे पेज का मध्यादि रावण को कैसे जलाते हैं फिर सोना लूटने जाते हैं। सोना माना सच्चाई, जो सच्चे सच्चे दिल वाली आत्माएं हैं हीरे जैसी, वो सच्चे सच्चे हीरे सब मुसलमान लूट ले गए। चैतन्य हीरो की बात है, बहुत वफादार आत्माएं होती है जो उनके अंडर भी कंट्रोल आ जाती है। लेकिन मिले कैसे? जब रावण जले, जलकर भस्म हो जाए, तब उन आत्माओं को छुटकारा मिले। नहीं तो सच्ची सोने की सीता मिल नहीं सकती। तुम सब सीताएं हो। तो रावण को कैसे जलाते हैं? वो तो स्थूल रूप में पुतला बना करके जला देते हैं। बात है संगम युग की, कैसे जलाते हैं? हाँ, रावण को जलाने का मतलब रावण के जी को जलाना। ज्ञान के बाण ऐसे तीखे तीखे लगते हैं कि रावण का जी जलता रहता है। तो देखो है क्या चीज। अभी तो वंडर लगता है, तो कहते जड़ पुतला बना करके जलाते हैं, क्या बन पड़ेगी? कितनी पूजा आदि करते थे, कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। बड़ा दिन माना त्योहार वगैरह, कितने टेंट घंटे करते हैं। है ये सब कहां की यादगार? सारी कहानी, सारे त्योहार सब इस समय की यादगार है। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, लेकिन गुड़ियों के खेल से न कुछ नफा होता है न कुछ नुकसान होता है। हाँ, नुकसान तो थोड़ा होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी होती है। वो गुड़ियों का खेल भी कितना समय चलता है ये तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे क्या गुड़ियों का खेल, फिर वृद्धि को पाते पाते अब तो देखो क्या हो गया है। गुड़ियों की पूजा में लगे रहते, भगवान को भी भूल गए, भगवान की बातों को भी भूल गए। इतना खर्चा करके चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं जब विनाश होना है तो? लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी खर्च करते हैं मंदिर बनाने में। यह है वेस्ट ऑफ मनी। ये बड़े बड़े म्यूजियम, बड़े बड़े सेंटर बनाने से कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, यादगार कहां की है? एक उदयपुर से आया, यहां सारी एडवांस नॉलेज ले गया, पूरा समझ गया, और फिर बाहर जाकर के 25,000 रुपए दान में दे दिए मंदिर बनाना है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी। तो ऐसी भक्ति करते करते अंजाम क्या होगा? फिर प्रश्न पूछते हैं, शरीर क्यों छूट गया जब हम एडवांस में आ गए? यहाँ तो बताते हैं कि कंचन काया बनेगी। अरे बाबा ने पहले ही कह दिया कि भक्ति के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वो सब तुमने कहाँ गवाया? रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़ी हो? ऐसे नहीं कि ईश्वर की भाभी पर राजी रहना है। ये कोई ईश्वर की भाभी नहीं है, ये तो माया की भाभी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग मिलता है, बात दुख की कोई बात नहीं होती। ईश्वर की भाभी और आसुरी भाभी में कितना फर्क है? ये समझ तुमको अभी मिलती है। ईश्वर की भाभी से कभी दुख नहीं मिल सकता, दुख मिलता ही है आसुरी भाभी से। बबीता बीता, तो ये समझ तुमको मिलती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार। कोई को कम मिलती है, कोई को ज्यादा मिलती है। कोई तो मुख से कहते हैं, हाथों से लिख करके देते हैं, हमको भगवान बाप मिल गया सुखदाता। फिर प्रैक्टिकल कर्म ऐसे करते हैं जिससे सबको साबित हो जाए कि इनको भगवान ही दुख दे रहा है। तो समझते हैं कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। बाप कहते हैं, भगवान की ये भवितव्यता नहीं है कि तुमको दुख मिल रहा है। दुख कौन देता है? माया राव। तो नंबरवार पुरुषार्थ संसार है। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है ये तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगता है और फलाने को कब लगा हुआ है, ये तो उनकी चलन से ही, उनकी सर्विस से ही पता लग जाएगा कि किसको ज्यादा लगा, किसको कम लगा, और किसी को बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। ये भी देखने में आता है कि इन्होंने ज्ञान एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ये तो बाबा जानते हैं ना, सर्विस पर सारा मदार है। इस बात का कि ज्ञान का नशा किसको चढ़ा है और किसको नहीं चढ़ा है, सर्विस पर ही बाप बताएंगे। इनको इंजेक्शन लगा नहीं है, ज्ञान तो ले गए, बहुत हाँ में हाँ मिलाई थी, निश्चय पत्र भी लिख के दे दिया, बहुत बड़ बड़ के बातें कर दी, खूब प्रतिज्ञाएं सुनाई दी, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर वापस गए और थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और ताजिया ठंडे। बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं जिसको जाति इंजेक्शन लगा है, कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। अगर ऐसा कोई समझे तो फिर कोई भक्ति करे कि भक्ति अज्ञान है, तो कोई भक्ति करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु समझते नहीं है क्या कि भक्ति करना अज्ञान है। भक्ति माना क्या और ज्ञान माना क्या? भक्ति माना अंधविश्वास और ज्ञान माना ज्ञान की रोशनी जिसमें श्रद्धा विश्वास भी होता है। ऐसे नहीं कि ज्ञान माना श्रद्धा विश्वास उखड़ जाए उड़ जाए। ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें श्रद्धा भी हो विश्वास भी हो, लेकिन अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा न हो। अगर ऐसा कोई समझे कि भक्ति अज्ञान है तो बिल्कुल भक्ति न करे। वो लोग तो भक्ति को ही ज्ञान समझते हैं, भक्ति को भक्ति, शास्त्र की पढ़ाई को ज्ञान समझ बैठे हैं। मैं मनुष्यों के लिखे हुए जो शास्त्र हैं उनको वो ज्ञान समझ बैठे हैं, गाते भी हैं ज्ञान का सुख का सागर परमपिता परमात्मा है। न कि शास्त्र सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, परमात्मा है। फिर उनको ठिकर बेतर में ठोक दिया है, जिनकी ठिकर बुद्धि है जैसे मिट्टी का ठिकर ढेला, ठोकर लगी और टूट गया, ऐसे अनिच्छे बुद्धियों में भी परमात्मा को समझ बैठते हैं। परमात्मा बाप उनमें प्रवेश करके हमको ज्ञान देता है। भीति मना दीवार की तरह जो ज्ञान के मार्ग में प्रचार और विस्तार में रोड़ा बनन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद परमात्मा बाप की बातों का विस्तार होने देते हैं, प्रसार होने देते हैं, और न दूसरों को करने देते हैं। ऐसों में भी भगवान समझ बैठते बित्तर बुद्धियों में। बच्चों को तो कितना निश्चय होना चाहिए, कैसे दीवार बन के खड़े हो जाते हैं ज्ञान के मार्ग में। बाप कहते हैं गली गली में गीता पाठशाला खोलो, और गुरु कहते हैं हमारे एरिया में नहीं खोलना, हमारी परमिशन के बगैर नहीं खोलना। तो बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए बाप के ऊपर। बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते, गाते भी हैं बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। कब बनेंगे? जब आप आएंगे, और आकर के चले जाएं तो दूसरों के बन जाए तो कोई हर्जा थोड़े ही। ब्रह्मा कितने में आए और आकर के चले गए तो अब दूसरों को बनने में क्या हर्जा है। लेकिन बाप तो कहते हैं बच्चे मैं आकर के तुमको साथ लेकर के जाता हूँ, मैं बीच में वापस नहीं चला जाऊंगा। भक्ति मार्ग में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है, क्या नहीं मालूम रहता है कि बाप आया हुआ है। ये पाठ अभी ही चलता है परमात्मा पाठ, अब चलता है संगम युग में, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाठ सिर्फ 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है। आत्माओं का भी साथ है ना, जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जाति नहीं होंगे, ये सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पार्ट मिला हुआ है। ये वंडरफुल बात है ना, ابھی تم بچے کتنے سمجھدار بنے ہو. تیسرا بھی یہ پڑھائی کتنی اونچے ہے, پرنتو کوئی بڑی یونیورسٹی آج کچھ ایسی دیکھنے میں نہیں آتی. کیا پڑھائی تو بہت اونچے ہے. ہاں پرنتو کوئی بڑی یونیورسٹی آج کچھ نہیں ہے. ماں دنیا میں جو ہوتا ہے پڑھائی اونچی تب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی اونچی بلڈنگ ہو, لمبا چوڑا ایریا, تم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ان کا تو نام ہی ہے پاٹھ شالا. کیا پاٹھ شالا کس کی ہوتی ہے؟ گرہستھیوں کی. گیتا پاٹھ شالا, گیتا ہے ہی پروتی مارک کا گیان شاستر. پاٹھ شالا تو چھوٹی بھی ہوتی ہے. گیتا پاٹھ شالا کہتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں؟ گیتا کا پاٹھ کرنے کا استھان, گیتا پڑھنے کا استھان. گیتا من گیت جس میں گائن ہو, بھگوان کی مہما ہو. اور پڑھانے والا بھی کون؟ گیتا پتی بھگوان سیم پڑھانے والا. سرو شاستر میں گیتا پرنتو ہے کتنی چھوٹی, وید شاستر کتنے بڑے بناتے ہیں اور گیتا, گیتا کی چھوٹی سی لاکٹ بنائے گلے میں پہن لیں گے. دوسرے وید شاستروں کی لاکٹ بنا کے کوئی گلے میں نہیں پہنتے ہوں گے. گلے میں پہننے کا مطلب کیا ہے؟ کنٹھ کر لیں. ایسا سار سوروپ گیان ہے کہ اس کو کنٹھ کیا جا سکتا ہے. کوئی کوئی کنٹھ کر بھی لیتے, اکثر کر کے اندھے دیکھے جاتے ہیں. اندھے پوری گیتا کنٹھ کر لیتے. گیتا بہت چھوٹی بناتے ہیں. ان سب باتوں کو تم ابھی سمجھ گئے ہو باپ دوارا کہ گیتا بہت چھوٹی کیوں بناتے ہیں. کہتے ہیں برہما کی اچھواس سے وید نکلے. اب منہ سے گیان سنایا جائے گا تو اچھواس ہوا تو نکلے گی نا. وانی جب بولی جائے گی تو اچھواس تو نکلے گا نا. تو برہما کے مخ سے وید وانی نکلی. وید مانا جانکاری. اور جو وید وانی نکلی اس کا جو سار ہے امرت مکھن, ज्ञान का अमृत माना गीता ज्ञान अमृत. तो वेदों की वाणी का मंथन होता है, सागर का मंथन होता है और मंथन करने के बाद वो सार निकलता है जिसे कहते हैं गीता ज्ञान अमृत. इसलिए बताया कि विचार सागर मंथन हुआ और उसमें से रतन निकले. ये बातें यहां की हैं जो ठीक है. तो जो सार निकलेगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा? जरूर छोटा होगा. तो बाप ही ज्ञान का सागर है, बाकी सब है भक्ति के सागर. भक्ति का विस्तार बहुत हो जाता है. वो सब हमको विस्तार में ले जाते हैं और बाप हमको सार में ले जाते. जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है. भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है तो कितनी विशाल बुद्धि चाहिए, तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी, न कोई शास्त्र में आंख डूबेगी और न कोई शास्त्रकार में आंख डूबेगी, शास्त्र बनाने वाले में न कोई राजा महाराजा में आंख डूबेगी। तुम कहेंगे क्या हम किंग क्वीन आदि को देखें, राजाओं रानियों को देखें या राजा रानी बनाने वाला आया हुआ है उसको देखें, हमें फायदा किससे होगा? तो तुम्हारी आंख कोई में नहीं डूबेगी, उनकी आंख बड़े बड़े आदमियों में डूब सकती है, जो दुनियावी रीति से बड़े बड़े आदमी हैं, राजाएं हैं, महाराजा हैं, लकबधारी हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, उनके पीछे पीछे फिरेंगे, लेकिन तुम्हारी आंख कोई बड़े आदमी में नहीं डूब सकती। ये तुम्हारी दिल हो कि उनको देखें, फोटो खिंचवाएं, सारी दुनिया देखे, उनको क्या देखना है, किनको? दुनियावी रीति से जो बड़े बड़े हैं, दिल में कोई आस नहीं होती तुम्हारे दिल में, क्योंकि तुम तो बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे दिल में उनको देखने की कोई आस नहीं होती। जानते हो ये सब खत्म होने वाले हैं, इन सबका तखता उलटने वाला है, जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही दो रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं, कौन? ये जो बड़े बड़े आदमी हैं, जिनमें दुनिया वालों की नजर डूबती है और तुम बच्चों की नजर नहीं डूबती, ये बड़े बड़े आदमी कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप हैं, तो पापियों में तुम्हारी नजर नहीं डूबती, तो तुमको संग का रंग किसका लगेगा? बाप का। और जिनकी पापियों में ही नजर डूबती है, आंख डूबती है, उनको संग का रंग किसका लगेगा? पापियों का। पेट पाप बहुत कराता है, का पेटू ब्राह्मण है। दो तरह के ब्राह्मण होते हैं, एक होते हैं धामा खाने वाले और एक होते हैं ज्ञान सुनने सुनाने वाले। यादगार कहाँ की है? सारी संगम की यादगार है। तो पेट पाप बहुत कराता है, एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। क्या पाप कराता है? है? झूठे कलंक लगाना। और पैसे भी ढेर कमाते हैं, कलंक भी लगाते हैं और ढेर पैसे कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? परंतु कोई कितना भी छिपावे वो छिप नहीं सकता है। क्या मान लो सेंटर्स की कमाई में ढेर सारे पैसे आए, कुछ बताए और कुछ छिपाए, तो कोई कितना भी छिपावे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि छिप नहीं सकेगा। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ कुछ भी करो। क्या? चाहे लौकिक धंधा करो और चाहे अलौकिक धंधा करो, क्योंकि अलौकिक धंधे से भी शरीर निर्वाह होगा। मेरी सर्विस करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, भूख नहीं मरेंगे इसका मतलब अलौकिक धंधे से भी तो शरीर निर्वाह हुआ ना, उनके लिए तो गारंटी हो गई, उनको पाव भर आटा जरूर मिलेगा। तो शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो उसके लिए मना नहीं करते हैं। बच्चों को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहना चाहिए, किसके लिए मना नहीं करते हैं? पेट पाव रोटी के लिए कोई भी धंधा करो, मना किसके लिए करते हैं? कि पाव भर रोटी से ज्यादा कमाई करने के लिए माथा मारी करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। जो भी बचाओगे वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। बच्चों को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे, बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बनाए देते हैं, धरती आसमान सब आपने हो जाते हैं। अभी तो धरती और आसमान पर ही मारा मारी है, तो हमारे देश में क्यों घुसे, हमारे सेंटर की हद में क्यों आए? आसमान पर भी मारा मारी, समुद्र में भी मारा मारी, हमारे ज्ञान सागर की मुरली क्यों पढ़ते? तो बच्चों को बहुत खुशी चाहिए। बाप याद रहे, बाप का वर्षा याद रहे, कोई की हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे, भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है, गायन है इसका विनाश कब नहीं होता, ये अविनाशी खंड है और सब धर्म खंड विनाशी है। ना आज से 2500 वर्ष पहले थे और ना अब रहेंगे। तो जो सच्चा होता है वही अविनाशी होता है और जो झूठा होता है वो विनाश को पाता है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद की पढ़ाई की भी खुशी होती है ना, ये तो बेहद की पढ़ाई है और पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं, वो जिस्मानी धंधा आदि किया है, परंतु वो क्या कीजिए, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क हो जाता। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते जाकर के सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए, वो काम काज भी साथ करते रहना है। ऐसे नहीं कि भीख मांगनी है, अपने पेट पोषण के लिए काम जरूर करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, बोझा चढ़ेगा दूसरों का, दास दासी बनना पड़ेगा। ये तो समझते हैं, ये तो पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, डरते भी हैं अंदर से कहीं बड़ी लड़ाई न लग जाए। ये सब ड्रामा अनुसार होना ही है क्या? हाँ, बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी भी करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील तैयार करते रहते हैं, क्योंकि डर लग रहा है ना कहीं बड़ी लड़ाई न लग जाए। ऐसे नहीं कि ईश्वर कराते हैं क्या बड़ी लड़ाई, वो समझते हैं भगवान ने महाभारत युद्ध करवाई दिए। भगवान कोई लड़ाई आदि कराने का धंधा नहीं कराता,
भक्त क्या समझते हैं कि भगवान ने महाभारत युद्ध कराया, ड्रामा में नूद है, आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है, बड़ी लड़ाई भी लगेगी और विनाश होगा। दो तरह की लड़ाइयां हैं बड़ी। पहली लड़ाई है महाभारी महाभारत गृह युद्ध, घर घर का युद्ध है, हर जगह आग लगे, गृह युद्ध, सब जगह मारामारी। और दूसरी लड़ाई है एटम बमों का विश्व युद्ध, ये है ग्लानी के बम, जैसे उन बम में से ऐसी बदबू निकलती है कि सूंघते ही लोग खलास हो जाएंगे, ऐसी ये ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े बड़े महारथियों की और परमात्मा बाप की ऐसी ग्लानी निकालेंगे जिससे सब सब भक्त जो है वो सब खलास हो जाएंगे, जो भी अन्य श्रद्धा लिए हुए बैठे। तो ये सब ड्रामा में नूद है, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये सब बातें अंदर सिमट करके खुश होना चाहिए। क्या खुश होना चाहिए कि विनाश होगा और जो भगत हैं अंधश्रद्धायुक्त तो होकर के चल रहे हैं देहधारी गुरुओं के पीछे या भगवान के पीछे अंधश्रद्धायुक्त तो होकर के चल रहे हैं, भगवान के भी तो भगत हैं, भगवान बाप के बच्चे भी हैं वारसदार, बाप की प्रजा भी है और बाप के भक्त भी बनते हैं, लेकिन नई दुनिया में कौन जावेंगे? बच्चे जावेंगे, वारसदार बच्चे जावेंगे, प्रजा भी जावेगी, क्योंकि फर्स्ट जन्म की प्रजा की क्वालिटी भी कोई साधारण क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन भक्त भक्त नहीं जाए। तो ये सब बातें अंदर में सिमरन करके खुश रहना चाहिए।
ओम शांति। 23 नंबर के रजिस्टर में 19 पेज पर 88 का प्रातः क्लास। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वो जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते, और दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कौन से 3 अक्षर? बाप, टीचर, सतगुरु। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं, कोई भी आए तो समझाना चाहिए। जिसको भगवान कहा जाता है वो बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए। और कोई को तो ऐसे कह न सके कि वो हमको वर्षा देने वाला बाप भी है, क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है और सदगति करने वाला
सदगुरु भी हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है। इतना सहज है, परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये तीन अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बेहद का वर्षा कौन सा है? विश्व की बादशाही जो सिर्फ देवताओं को ही मिलती है और कोई मनुष्य मात्र को नहीं मिलती। अगर ये पक्का निश्चय हो जाए तो कहीं घूमने फिरने की भी दरकार नहीं, घर में बैठे भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परंतु ये भी भूल जाने के कारण किसको पता बता ही नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाती, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में इस ज्ञान को बहुत सिंपल कहा जाता है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है तो पतितों को पावन भी बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठाते तो फिर वो कदम क्या पाएंगे? कदम कदम में पदम किनके होंगे? जो सर्विस में कदम उठाएंगे उनके कदम कदम में पदम हैं। पदमपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहां कहां से भागते रहते, कितने कदम उठाए जाते हैं? जितने कदम उठाए जाते हैं उतने पदम उनको मिलते हैं। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, फर्स्ट मशीनरी। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो शूद्र विकारी हैं उन विकारियों को पवित्र ब्राह्मण बनाना। अगर पवित्र ही न बना पाया, ये लक्ष्य ही धारण नहीं किया कि हमें पवित्र बनाना है, बनना है और बनाना है, तो कुछ बनेंगे नहीं। सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो। सर्विस से ही पदम मिलते हैं। एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते, बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं है। बाप का भी एड्रेस होता है क्या? सिर्फ ऐसे ही गॉडफादर कहते रहते हैं। वो टीचर है ये तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है, तो टीचर क्या करेगा, टीच करेगा। टीच करने वाला तो जरूर उसका एड्रेस एड्रेस भी होगा, बाप है तो वर्षा देगा, और वर्षा देगा तो जरूर वर्षा देने वाला होगा ना। और सदगुरु तो कहते ही है अकाल मूर्त, बिना मूर्त के तो सदगुरु हो नहीं सकता। तो जो पूरी रीत नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर्जर नहीं, तुम कुछ भी न पढ़े हुए हो ये तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं, हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कौन से ब्रह्मा द्वारा? बाप के आने का लक्ष्य क्या है? एक सद्धर्म की स्थापना करना, और एक सद्धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्मों का विनाश, असत धर्मों का विनाश हो ही जाता है। तो लक्ष्य पूरा करके जाएंगे या बीच में ही चले जाएंगे? और किसके द्वारा करते हैं? ब्रह्मा द्वारा। एक सद्धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, मीडिया कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, न एक सद्धर्म की स्थापना हुई और न एक न अनेक असत धर्मों का विनाश हुआ। फिर क्या झूठ बोला? झूठ नहीं बोला। अगर 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो ब्रह्मा भी तो टाइटलधारी ब्रह्मा था। ब्रह्मा ने बड़ा मां माने मां, बड़ी मां, बाप की बन्नी, पहली पहली। तो यज्ञ के आदि में जो पहली पहली बन्नी बनी, बन्नी तो फीमेल होगी या मेल होगी, इसलिए मुरलियों में कहते हैं ये ब्रह्मा तुम्हारी माँ है, बड़ी माँ, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए फीमेल्स के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? तो किसको निमित्त बना दिया? सरस्वती को निमित्त बना दिया। इसका मतलब ब्रह्मा को मेल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। जैसे फीमेल शब्द आता है ना मेल के साथ, दुष्ट दुष्टा, तो स्त्रीलिंग में एक मात्रा बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से ब्रह्म और ब्रह्मा, तो ब्रह्मा कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। और ब्रह्म हुआ पुल्लिंग। ब्रह्म का अर्थ भी होता है बड़ा, जैसे परम धाम। आकाश तो बड़ा होता ही है, लेकिन आकाश से भी बड़ा ब्रह्म। जैसे उस ब्रह्म से आत्माएं निकलती है, और ये धरणी रूपी माता पर आकर के जन्म लेती है। वो बीज रूप आत्माएं निकलती कहां से? ब्रह्म से। ऐसे ही परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो बाप भी चाहिए और माता भी चाहिए जो बीज को धारण करे। तो ब्रह्मा द्वारा सत धर्म की स्थापना, अब यज्ञ के कार्य में ये कार्य हुआ नहीं, मध्य में तहसीलदारी ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया, तो जरूर जो आदि में था वो ही फिर अंत में प्रत्यक्ष होता है, और तहसीलदारी ब्रह्मा को भी उसमें प्रवेश करना पड़े। तो जिसमें प्रवेश करके सद्धर्म की स्थापना कराते हैं, परंतु वो लोग तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही कह देते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। काय की स्थापना कब हुई? स्थापना द्वारा कैसे, द्वारा कौन, तो कुछ नहीं जानते। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों हैं कि हे लिबरेटर आओ, हमको असत धर्मों के चंगुल से छुड़ाओ, हे पतित पावन आओ, हम पतितों के संग में पतित बन गए, हमको पावन बनाओ। तो पतित से पावन बनाने के लिए और लिबरेट करने के लिए आया तो होगा ना, कि आया और पढ़ाई पढ़ा के चला गया और लिबरेट अपने आप होते रहेंगे, या देहधारी गुरु बनाते रहेंगे, लिबरेट करते रहेंगे, पतित से पावन बनाते रहेंगे, फिर तो गुरुओं को ही बुलाते। लेकिन गुरुओं को नहीं बुलाते, किसको बुलाते हैं? ये पतित पावन आओ कह करके गॉड फादर को ही बुलाते हैं। जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? पतित पावन ही तो पतितों को पावन बनाएगा या शास्त्र बनाएंगे? तीर्थों पर क्यों जाते? एक बात नहीं है भक्ति मार्ग में, कभी समझेंगे कि शास्त्र पढ़ने से बुद्धि पवित्र हो जाएगी, कभी समझेंगे तीर्थों पर जाने से हम स्नान करने से पवित्र हो जाएंगे। अब वहां तीर्थों पर बैठा है क्या कि जड़चित्रों को दर्शन करने के लिए जाते हैं? है? ट्रांसलेट के चित्रों का कोई जानते नहीं है। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो फिर गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते हैं? गंगा स्नान आदि सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना स्नान भी करने जाते हैं मथुरा में, वृंदावन में, और दूसरी दूसरी नदियों का भी स्नान करने जाते हैं, अमृतसर में भी स्नान करने जाते हैं। तो एक बात नहीं है बुद्धि में, मन बुद्धि अव्यभिचारी नहीं है, तो पतित से पावन कोई हो नहीं सकते, स्वर्ग कोई कैसे जा सकता है? जन्म तो यहाँ ही लेना है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आ गया? मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहां भी थोड़ा सा सुख देखते हैं तो उनको ही स्वर्ग समझ लेते हैं, बिल्कुल जैसे जट। ये बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं कि हमको जट बुद्धि कह दिया, बाप तो शिक्षा भी देते हैं। साहब को सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भल कितना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे खुशबू नहीं आती। दूसरा पेज, अंतर्मुख होकर के समझाना है। बाबा ठीक कहते हैं ना, गुरु के पास कोई जायदाद नहीं होती है, वो तो खुद ही घर बार छोड़ देते हैं। जो खुद ही छोड़ छाड़ के जंगल में जाते हैं, उनके पास जायदाद कहाँ से आई? तो जायदाद किसके पास होती है? बाप के पास। अरे गुरु के पास जायदाद नहीं होती है, लेकिन हमारा बाबा बाप भी है तो सतगुरु भी है, गुरु नहीं है। घर बार छोड़ने वाला गुरु नहीं है, लेकिन घर बार में रहने वाला गुरु है। तो मैंने सन्यास किया है 5 विकारों का। तुम कोई घर बार का सन्यास नहीं करते हो, तुम घर घाट छोड़ने वाले उन सन्यासियों के फॉलोअर नहीं हो जो घर घाट छोड़ दो। वो तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा, बड़े अहंकार से कहते हैं। तुमने कुछ त्याग किया? हम तो घर घाट छोड़ करके आए हैं। तुम कहते हो हम सारी पुरानी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। तुम तो हद का संन्यास करते हो, सिर्फ एक घर घाट छोड़ते हो। और हम तो सारी पुरानी दुनिया को छोड़ देते हैं। तुम एक घर घाट छोड़ते हो और जब तमो प्रधान बनते हो तो ढेरों के घर घाट अपने अंदर में कर लेते हो, महलमाड़ियां सारी अपने अंदर में कर लेते हो। और हम तो अपना भी छोड़ते और सारी दुनिया का घर घाट छोड़ देते। तो तुमने संन्यास किया है विकारों का। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सस्ती तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया, ये भी जानते हो। नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, कौन सा वर्षा देने वाला बाप? ये सब पुरानी दुनिया के घर घाट का बाप वर्षा देने वाला नहीं कि हमको म्यूजियम दे देगा, बना के सेंटर बना के दे देगा, नहीं। वो है कौन सी दुनिया का? नई दुनिया का वर्षा देने वाला। तो वो बाप भी है और शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। साहब को ले जाएंगे। अक्षर ही दो है, मन मना भव, इसमें सब आ जाता है। वर्षा भी आ जाता है, पूरी पढ़ाई भी आ जाती है और सदगति भी आ जाती है। परंतु ये भी भूल जाते हैं कि मनमाना भव का अर्थ क्या है। मत मना भव, मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समझा। तो मेरे मन में जो संकल्प होंगे वही तेरे मन में संकल्प होंगे, जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, यानी संकल्प मात्र भी बच्चों का बाप से विरोध न हो। वाचा और कर्मणा में विरोध होना तो बहुत दूर की बात हो गई, तब कहा जाएगा कि बाप भी मिल गया, टीचर भी मिल गया और सदगति करने वाला भी मिल गया। बुद्धि की सदगति कर दी, जैसे बाप कल्याणकारी संकल्प वाला है कि नई दुनिया स्वर्ग स्थापन हो, वैसे बच्चे भी श्रेष्ठ संकल्प धारण करने वाले विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे, परंतु ये भी भूल जाते, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख करके दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे, क्या क्या संकल्प चलाए रहे थे, कैसी स्टेज थी। तुम बैठे हो बाप टीचर सतगुरु के सामने, तो जिसके सामने बैठे हो वो ही याद आना चाहिए ना, है? दूसरा याद क्यों आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जहां लगाव लगा होगा वो सामने हो या न हो वो याद जरूर आएगा। जिससे लगाव नहीं है वो सामने बैठे हुए भी याद नहीं आएगा, आंखें खुली होते हुए भी हम उसको नहीं देख सकेंगे, और फिर भी आंखें किसको देखेंगी, जहां लगाव अनेक जन्मों का लगा हुआ है, ये रग पड़ गई है देहधारियों से लगाव की, तो बाप ही याद आना चाहिए सन्मुख बैठकर। स्टूडेंट को टीचर ही याद आना चाहिए, परंतु यहां माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ दे, सारा राज्य भाग ही छीन लेती है, तुमको पता भी नहीं पड़ता है कि माया ने हमारा माथा मुड़ लिया। आए तो थे वर्षा लेने, किसके पास, बाप के पास, परंतु मिलता कुछ भी नहीं, फिर कंप्लेंट करते हैं, अगर भगवान है तो उसने हमको क्यों नहीं सुधारा, भगवान से हमको प्राप्ति क्यों नहीं हुई, भगवान से तो सबको प्राप्ति होती, तो मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसे तो कहेंगे ना, बल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, बाप कोई स्वर्ग में ले जा करके प्रजा बनाने के लिए नहीं आते, बाप आते हैं किस लिए, क्या सिखाने के लिए आते हैं, राजयोग प्रजा योग सिखाने के लिए नहीं आते हैं कि तुम प्रजा बन जाओ, आधीन बन जाओ, क्या सिखाने के लिए आते हैं, राजा बनाने के लिए आते हैं, स्वाधीन, राजा किसी के आधीन नहीं होता, तो स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहां आए भले आए परंतु पढ़े नहीं, आ तो गए बाप के सन्मुख परंतु पढ़ाई नहीं पड़ी, तो फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएंगे, यहां आए हैं तो जरूर पूर्व जन्मों का कुछ हिसाब किताब है, हिसाब किताब किसके साथ, बिंदु के साथ या साकार के साथ, सदाकार के साथ हिसाब किताब है 63 जन्मों का, इसलिए आए हैं। और आए हैं तो भले पढ़ाई पढ़े या न पढ़े, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। परंतु वो तो पढ़ाई नहीं हुई, थोड़ा भी सुना तो उनका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंच से ऊंच पद पाना है तो पढ़ाई पढ़ना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आ जाना चाहिए, परंतु ये भी याद आता नहीं है। अगर उनको याद आए तो किसको सुनाए भी, क्या कहा, दूसरों को जरूर सुनाएंगे, सर्विस जरूर करेंगे। चित्र तो सबके पास है, शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। किसके चित्र पर? शिव के चित्र पर। क्यों बोलो? आओ तो हम आपको बताएं कि शिव बेहद का बाप है ना, नहीं तो बेहद का बाप कौन है? जो बेहद का बाप होगा उसकी मान्यता बेहद में होगी या हद में होगी? बेहद में मान्यता होगी। हद कहते हैं 4, 8, 10, 20, 50 बच्चों का बाप, और बेहद मन 500 करोड़ मनुष्य मात्र का बाप। तो वो बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। तो उस बेहद के साथ बाप के साथ आपका क्या संबंध है, उनसे पूछो। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? पूछने वाला कहता भी जाता है, क्या परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? पूछने वाले ने स्वयं जवाब भी दे दिया है। क्या जवाब दे दिया? टाइटल लगा दिया ना, परमपिता। तो क्या संबंध हुआ? तो उससे बड़ा पिता तो कोई होता ही नहीं, बेहद का हुआ। तो जवाब आ जाना चाहिए ना, परंतु ऐसे ही कह देते हैं कि वो हमारा परम पिता है, बेहद का बाप है। संबंध बताए देते हैं, लेकिन संबंध साकार में होता है। ऐसे तो फालतू चित्र नहीं होगा। चित्र किसका बनेगा है? जिसका चरित्र होगा उसका चित्र बनेगा। बिंदु का चरित्र होगा? बिंदु का चरित्र नहीं होता है। बिंदु जब साकार शरीर में प्रवेश करके पार्ट बन जाता है तो उसका चरित्र होता है, और वो चरित्र देश विदेश में चित्र के रूप में माना जाता है, बनाया जाता है,